الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ہم لوگوں کو اللہ جل شانہ نے اپنے فضل و کرم سے انسان بنایا ہے، اور اللہ جل شانہ نے ہم پر مزید کرم فرما کر ہمیں مسلمان بھی بنا دیا ہے. ماں کی گود میں اللہ پاک نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا. یہ اس کا اتنا بڑا کرم ہے کہ کبھی بھی ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے. اب دیکھ لے ذرا، ادھر ادھر کتنے ذہین اور فتین لوگ ہیں جو دنیا کے کاموں میں بہت آگے ہیں، اور ایک دنیا ان کے پیچھے چل رہی ہے. آئنسٹائن کو دیکھو، نیوٹن کے دیکھو، اور اس قسم کے کتنے بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں کو دیکھو، ذہین لوگوں کو دیکھو، لیکن وہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں. بلکہ ان سے زیادہ حیرت ان پر ہوتی ہے جو سائنسدان ہے اور دین اور ایمان سے محروم ہے، کیونکہ سائنسدانوں کے سامنے یہ بالکل یہ بات کلی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی بھی کام بغیر کسی فائل کے نہیں ہو سکتی. یعنی کوئی بھی جو کام کرے، بلکہ حتیٰ کہ نیوٹن کا جو پہلا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی چیز اگر کڑی ہے تو کڑی رہے گی اور جب تک اس کو چلایا نہیں جائے گا، اور کوئی چیز اگر حرکت میں تو حرکت میں رہی جب تک اس کو روکا نہیں جائے گا. یعنی کرنے والا سے کام بنے گا، چاہے وہ اس کو روکنے چاہے اس کو چلانے ہیں. تو یہ تمام باتیں ان کو معلوم ہونے کے باوجود وہ جو ہے نا اس بات پر نہیں سوچتے کہ ہمارا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، اور ہم لوگ اس کے سامنے مطلب جو ہے نا وہ بھی ہے، جواب دہ بھی ہے. لیکن بہرحال ہمارے بھی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی. البتہ اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، ایمان کی حفاظت کرنا. تو ایمان کی حفاظت کس طرح ہوتی ہے؟ ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ صحیح سے سالم چل رہا ہے، آگے آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے، اس کو اللہ پاک نے اتنا ہوش دیا ہوا ہے، اتنا مطلب اس کو عقل دیا ہوا ہے کہ آگ میں اگر میں ہاتھ ڈالوں گا تو جل جاؤں گا، یا آگ میں پیر رکھوں گا تو جل جاؤں گا. اس کے باوجود بھی کوئی وہ پرواہ نہ کرے، کہتے کوئی بات نہیں، بس جو اللہ کرتے وہی کرتے اور آگ میں چل جائے. تو کیا خیال ہے وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے قانون تو تبدیل نہیں کرتا. ہاں جی، وہ جل جائے گا. اس طرح ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی محنت مزدوری نہیں کرتا، جتنے بھی آپشن اس کے پاس ہیں ان کو استعمال نہیں کرتا، اور کہتے اللہ مالک ہے. ہاں جی، تو اب اگر اس کے پاس کچھ نہ آئے اور فاقے اس کو کرنے پڑے تو اس میں قصوروار کون ہے؟ ظاہر وہ خود ہے کہ سامنے کھانا رکھ دیا جائے، وہ نوالہ تک نہ بنائے اور پھر کہے کہ جی بس اللہ پاک مجھے کھلائے گا تو کھلائے گا. ہاں جی، اب ظاہر ہے وہ کیا ہے، یہ بیوقوفیاں ہیں، یہ بیوقوفیاں ہیں. تو یہ بیوقوفیاں جو ہے نا، یہ تمام دنیائی بیوقوفیاں تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساری بیوقوفیاں ہیں، لیکن وہ جو دینی بیوقوفیاں ہیں وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں بلا دیتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا بڑی نعمت ہے جس کا ہم کبھی بھی شکر نہیں ادا کر سکتے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ایک چیز ہے، چاہے وہ ایک عدد کیوں نہیں ہے، اس کو اگر آپ صفر پر تقسیم کر لے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہاں جی، ایک کو اگر صفر پر تقسیم تو انفائنائٹ، مطلب یہ کہ وہ اس کا حد و شمار نہیں ہے. ایک کو، ایک سب سے کم عدد ہے، اس کو بھی اگر ہم صفر پر تقسیم کر لیں تو یہ اس کا شمار و قطار نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ کہ انفائنائٹ ہے. تو گناہگار سے گناہگار آدمی جو ہے، گناہگار سے گناہگار آدمی، اس کا بے ایمان آدمی کے ساتھ اتنا ریشو ہے. گناہگار سے گناہگار آدمی کو آپ ایک سمجھے، ہاں جی، جس کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف بس ایمان ہے، और वो जो है ना उसका जो है ना वो बेईमान आदमी के साथ ये रेशो है, मतलब उसका वो एक रेशो क्या है, वो ये है कि गुनाहगार आदमी अपने गुनाहों की वजह से जितना भी जल जाए जहन्नम में जल जाएगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं होगा जहन्नम में, और जो बेईमान आदमी हो हमेशा के लिए जहन्नम में होगा। हाँ जी, अब अंदाज़ा कर ले कि इसका रेशो कितना है। तो अब ईमान जो इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह पाक ने हमें बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी कोशिश के अल्लाह पाक ने अता फरमाई, तो क्या हम इसकी इसकी वो जो है ना वो हिफाजत ना करें। हाँ जी, तो हिफाजत ना करने का मतलब क्या है, ऐसे लिटरेचर को पढ़ना जिससे ईमान के ऊपर फ़र्क पड़ सकता है, ऐसे लोगों के साथ मिलना जिससे ईमान को फ़र्क पड़ सकता है, ऐसे लतीफ़े सुनना या देखना जिसमें ईमान को फ़र्क पड़ सकता है, ऐसे मतलब जो है ना वो यानी बातें करना जिससे ईमान को फ़र्क पड़ सकता है, इससे ऐसे दूर भागना चाहिए जैसे आँख से कोई दूर भागता है, आँख से कोई दूर भागता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा किराम की एक जमात आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हमारे दिलों में तो ऐसे वसवसे आ रहे हैं कि हम लोग उसको ज़ाहिर नहीं कर सकते, और अगर वो ज़ाहिर होते हैं तो उसके बजाय हम जल कर कोयला होना पसंद करेंगे कि वो ज़ाहिर हो जाए। हाँ जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग को ये हालत हासिल हो गई, तो उन्होंने कहा कि हज़रत हमें तो यही हाल, फरमाया ज़ाका सरीउल ईमान, यही तो असल ईमान है। असल ईमान किस तरह है, असल ईमान इस वजह से है कि जो है ना मतलब यह है कि ये जो है ना यानी इस ईमान की वजह से जो है ना मतलब है कि वो जो है ना वो उसको परेशानी है, उसको टेंशन है, अगर ईमान के मतलब जो है ना उसको वो यानी मसला ना होता तो इसके ऊपर क्यों तंग होते, फिर तो तंग ही ना होते, फिर तो तंग ही ना होते। तो इसका मतलब है कि ये जो गलत बातों के ऊपर हमें तकलीफ होती है या ईमान के बारे में हमें फिक्र होती है, तो ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को अपने ईमान की ऐसी हिफाजत करना चाहिए कि ज़रा पर वसवसा भी आ जाए तो हम लोग जो है इसके बारे में फिक्रमंद हो जाए कि हम किधर जा रहे हैं। हाँ जी, तो ईमान की हालत में बहुत सारे लोग हैं वो ऐसी ज़ुबान से बात कर लेते हैं, ओ यार ये काफिर मुसलमानों से अच्छे, इन्ना लिल्लाह वइन्ना इलैहि, काफिर मुसलमान से कहाँ अच्छे। हाँ कह सकते हैं काफिर मुसलमानों से इस काम में अच्छे, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि काम की नौीयत अलग है। मसलन ये काफिर झूठ बोल नहीं बोलता, मुसलमान बोलता है तो हम कहेंगे काफिर ये झूठ नहीं बोलता, ये मतलब अच्छा काम कर रहा है, तो ठीक है काफिर अच्छा काम कर सकता है लेकिन अच्छा मुसलमान से नहीं है। ये दोनों बातें बहुत अहम है, इसको समझना आजकल के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफिर का कोई काम तो अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ काफिर अपनी दुनिया के मामले में बड़ा होशियार है, वो बहुत मेहनत करता है, उसको जो है ना वो अल्लाह पाक दुनिया बहुत देते हैं, उसके मेहनत के मुताबिक देता है। तो ये मैं उसमें कोई नहीं कह रहा हूँ कि मैं अब खाम खा मुसलमान अगर सुस्त हो तो वो मैं कह दूँ नहीं नहीं मुसलमान इससे अच्छे नहीं, मैं वो तो गलत बात होगी, वो जो वो जो है ना वो बजंग अहमद करना मोहम्मद खान साहब का, मोहम्मद खान साहब की किताब है, उसमें उसने वाक्य लिखा कि हमारी कन्वाई जा रही थी इराक से गुजर के, हम जो है मतलब जिस वक्त थे शाम के हदूद से क्रॉस करके फ़लस्तीन के हदूद में दाखिल हो गए, तो हमने देखा कि मुसलमानों की जो ज़मीनें थी वो बिल्कुल जैन बंजर और जैन मतलब के बगैर किसी इंतज़ाम के पड़ी हुई थी, और यहूदियों की जो थी मतलब जैन ज़मीनें वो बहुत उसके अंदर के तबाड़ी और तमाम चीज़ें सही तरीके से हुई थी, बहुत इंतज़ाम था। आज भी एग्रीकल्चर का सिस्टम जो है ना उनका वाकई बहुत अच्छा है। तो अब ये है कि उनने कहा कि काश मुसलमान भी इस चीज़ से सीखते, अब ये बड़ी बात है, ज़रूर बात सही बात थी। उसका मतलब यह है कि अब ठीक है अगर मुसलमान मेहनत नहीं करता तो अल्लाह पाक ने चूंकि ये चीज़ें मेहनत पर रखी हुई हैं, मेहनत पर रखी हुई है, लिहाजा उसको उसका हिस्सा नहीं मिलता। हाँ जी, लेकिन अब जो चीज़ हमने अल्लाह ताला ने जो है ना मतलब मेहनत पर रखी उसको तो आप उसके हिसाब से तोले, लेकिन जो आखिरी नतीजा है वो ईमान का बगैर ईमान वाले के साथ कंपेयर करना नामुमकिन है। आजकल बड़े ब्रॉड माइंडेड बनते हैं, ओ जी ये काफिर जो है ना हमसे ज्यादा ईमानदार है, कैसे ईमान तो उनमें है ही नहीं थी, ईमानदार कैसे हुए। हाँ कह सकते थे ईमानदार ज्यादा है, चलो जी वो मान सकता हूँ, मैं मुझसे ज्यादा ईमानदार हो सकते, किसी और से ज्यादा वो ठीक है, मसला ड्यूटीफुल होंगे। ये यहाँ तक बात होगी कि एक कादियानी थे, वो जो है ना एक मुसलमान अब जो इमाम और जिनके साथ पहले नमाज पढ़ते थे बाद में कादियानी हो गए थे, तो उनसे कहा कि जब तक मैं आपके दीन पढ़ता उस वक्त मेरे दिल में बड़े वसवसे आते थे, मेरी नमाज वसवसे भरी होती थी, कोई सुई नहीं होती थी। अब जब मैं नमाज पढ़ता हूँ बहुत आराम से पढ़ता हूँ, कोई वसवसा नहीं आता, हमारा दीन अच्छा है। तो उस इमाम साहब ने खबर भी है, यही तो हमारे हमारे दीन के सही होने की अलामत है। उन्होंने कहा ये कैसे? उन्होंने कहा मुझे बताओ कि जो डाकू है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पर गोबर और बुस वगैरह पड़ा होगा वहाँ जाएगा, या जहाँ पर हीरे जवाहरात होंगे वहाँ जाएगा? तो उसने कहा जहाँ पर हीरे जवाहरात होंगे वहाँ जाएगा। उन्होंने कहा भाई तुम्हारे दिल के अंदर जो हीरे जवाहरात थे, ईमान की रोशनी थी, वो तो उस वक़्त जब थी तो उस वक़्त डाकू आता था उसको लेने के लिए, लिहाजा बस वैसे आते थे। अब तेरे अंदर बिल्कुल बुस और गोबर भरा हुआ है, मतलब जहर दिल में, अब तो वो चीज़ है नहीं, तो उसके लिए डाकू क्यों आए? यही तो हमारे लिए अलामत है कि हम हक पर हैं। बस यही बात है कि बस वो चुप हो गया। तो उसका मतलब यह है कि ये जो मतलब ईमान की दौलत है उसकी हिफाजत बहुत करनी चाहिए, बहुत हिफाजत करनी चाहिए, उस पर खुश होना चाहिए, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक, अल्लाह तूने मुझे ईमान की दौलत अदा कर, क्योंकि लेन शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र रखे तो मैं नेमतों को मजीद बढ़ाऊंगा। तो अगर ईमान की दौलत पर शुक्र करोगे तो ईमान अल्लाह ताला मजबूत करेगा। तो यही असल में बुनियादी बात है, ईमान हमारी बड़ी दौलत है। सुमस्तकिम, अलबत्ता अब उस पर इस्तकामत इख्तियार करना चाहिए, इस्तकामत अमली भी और इल्मी भी दोनों तरह, यानी हम इस पर इस्तकामत, यानी हम लोगों को ईमान की हिफाजत भी करना चाहिए और ईमान के जो समरात है उनको भी इस्तकामत के साथ हासिल करनी चाहिए। और वो क्या है? अमाल है। अमाल, अमाल जो है ना, मतलब यह है कि हमारे जो है ना वो अमाल वो ईमान के मुताबिक हो। मैं जब कहता हूँ अल्लाह एक है तो फिर उसको एक समझू ना, फिर एक किसी और को कैसे शरीक कर सकता हूँ? और जब मैं कहता हूँ कि सारे काम अल्लाह करता है तो फिर उसको मान लूँ ना, और जब मैं कहता हूँ कि जन्नत और दोजख है तो फिर उसको उसके मुताबिक तैयारी करूँ ना। हाँ, तो ईमान का तकाज़ा ये है कि सही अमाल कर लूँ। तो इन्नल्लज़ीन कालू रब्बुना अल्लाह, जिसने कह दिया रब हमारे अल्लाह है, सुम इस्तकाम, फिर इसके मुताबिक इस्तकामत यानी फिर काम भी करें उम्र भर इसके पर लोग लगा रहे, तो फिर इसके बाद अल्लाह जल्ला शानू की तरफ से अपने उसके फजल से फरिश्तों की जमात आएंगी मिलने के लिए, मौत के वक़्त उनसे मुलाकात करेंगे और उनको खुशखबरी देंगे कि जो है ना खौफ करो ना गमगीन हो, तुम्हें ऐसी जन्नत की बशारत हो जिनका तेरे साथ वादा था, और तुम्हारा वजह फरमाया और फरमाया कि हम तुम्हारे साथ अब तुम अभी तुम्हारे साथ जा रहे हैं, और तुम्हें जो जन्नत मिलेगी उसमें तुम्हें जो चीज चाहेगा तुम्हें मिलेगा, और जो तुम मुझसे मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह गफुर रहीम की मेहमानी होगी। तो असल बात यही है कि हम लोगों को अपने ईमानों पर बहुत खुशी का इजहार करना चाहिए, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला हम सबको मतलब हमारे ईमानों को सलामती नसीब फरमा दे, और मौत तक इसमें कोई भी मतलब जन्म वो ना हो, इस ईमान के साथ हम इस दुनिया से चले जाएं और ईमान के साथ अल्लाह पाक के सामने हाजिर हो जाएं, और आमाल हमारे अल्लाह ताला इस ईमान के मुताबिक कर ले, और जो शैतान के और जो फजूलियात के जो मतलब जो वसावस है उनसे अल्लाह ताला में महफूज फरमा दे, और अल्लाह जल्ल शानू अपने कर्म करम से हमें उन अमाल की तौफीक अता फरमाए जिससे वो राज़ी होता है, उन अमाल से बचा दे जिससे वो नाराज़ होता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैर मा सअलका मिन अब्दुका व नबीक हबीबक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तअज़ा मिन अब्दुका व नबीक हबीबक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंतल मुस्तआन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिक, सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।